लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि कैथोलिक विश्वासी यूखरिस्तीय समारोह को अपने हृदय के केंद्र में रखकर मानवीय रिश्तों को रूपांतरित करने में सक्षम बने तथा अपने समस्त भाइयों एवं बहनों और ईश्वर के संग साक्षात्कार के प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने एवंजेली गौडियम के 5वें अध्याय की शुरुआत की है, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। हम सभी अपने जीवन के द्वारा जीवनदायी ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाए गए हैं और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्यों का निष्पादन हम में व्याप्त अच्छाई का परिणाम नहीं अपितु पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जहां वे हमें हृदय की गहराई में नेक कार्य करने को उत्प्रेरित करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने विगत प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि आत्माओं को सुसमाचार सुनाने वाले हमें अपने में एक आध्यात्मिक रास जगाने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों के जीवन के निकट रह सकें और इस बात की खोज कर सकें कि यह स्वयं ही वृहद खुशी का सुकून प्रदान करती है। लोगों के लिए प्रेरितिक कार्य यीशु के लिए एक समय जुनून था। जब हम क्रूसित यीशु के सामने खड़ा होते हैं तो हम उनके प्रेम की गहराई को पाते, जो हमें ऊपर उठाता और हमें पोषित करता है। लेकिन वहीं जब तक हम अपने में अंधे नहीं हैं, हम ईश्वर की निगाहों को अनुभव करना शुरू करते हैं, जो प्रेम से प्रदीप्त होता है, जो सारी मानव जाति का आलिंगन करने हेतु अपनी बाहों को फैलाता है। वे हमें अपने लोगों के बीच से बुलाते और अपने लोगों के बीच भेजते हैं, जिससे हम उन्हें घोषित कर सकें। श्रोताओं, यीशु ख्रिस्त स्वयं इस तरह के सुसमाचार प्रचार के आदर्श हैं, जो हमें उनकी प्रजा के हृदय के करीब लेकर आता है। हर व्यक्ति के लिए प्रकट की जाने वाली निकटता पर चिंतन करना हमारे लिए कितना अच्छा है। यदि वे किसी के साथ वार्ता करते हैं तो वे गहरे प्रेम और उसकी चिंता करते हुए सीधे व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। यीशु उसकी आंखों में देखते और उसके प्रति उनका प्रेम उमड़ पड़ता है। हम उन्हें बिना किसी हिचक के लोगों के पास आता देखते हैं, जैसे कि वे अंधे व्यक्ति के पास आते हैं। वे पापियों के साथ होते और उनके संग खाते पीते हैं। वे इस बात की चिंता नहीं करते कि लोग उसे पेटू और मतवाला कहेंगे। हम उनकी संवेदनशीलता को देखते हैं जहां वे पापिनी स्त्री को अपने पैरों का लेपन करने की अनुमति देते हैं और रात्रि पहर में निकोदेमुस को अपने पास आने देते हैं। क्रूस काठ में यीशु का बलिदान अपने में और कुछ नहीं बल्कि हमारे लिए उनके जीवन की प्रकाष्ठा को व्यक्त करता है कि कैसे उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर हम अपने को पूर्ण रूपेण समाज के ताने बाने में प्रवेश करने की चाह रखते हैं। सबों के संग अपना जीवन साझा करते, लोगों की चिंताओं को सुनते, उन्हें उनकी भौतिक और आध्यात्मिक जरूरतों में मदद करते हैं। हंसने वालों के संग हंसते, रोने वालों के संग रोते हैं। दूसरों के संग कंधे से कंधा मिलाकर हम एक नई दुनिया के निर्माण में अपने को समर्पित करते हैं। हम ऐसा किसी जरूरी कर्तव्य के निर्वहन के मद्देनजर नहीं, ना ही इसे एक बोझिल उत्तरदायित्व के रूप में करते, लेकिन एक व्यक्तिगत निर्णय के अनुरूप करते हैं जो हम में खुशी लाती और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। श्रोताओं, कभी कभी हम उस तरह के ख्रिस्तीय बने रहने की परीक्षा में पड़ जाते जो अपने हाथों को ईश्वर के घावों से दूर रखते हैं। फिर भी यीशु हमसे चाहते हैं कि हम मानवीय तकलीफों का स्पर्श करें। वे हमें दूसरों के शरीर के घावों को छूने को कहते हैं। वे हमसे आशा करते हैं कि हम उन व्यक्तिगत और सामुदायिक स्थानों की तलाश करना बंद करें जो हमें मानवीय दुर्भाग्य के भावर जाल से बचाते हैं और इसके बदले दूसरों के जीवन की वास्तविकता में प्रवेश करें जो हमें कोमलता की शक्ति का एहसास करने में मददगार सिद्ध होता है। जब कभी हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन आश्चर्यजनक रूप में जटिल हो जाता और हम गहरे रूप में इस बात का अनुभव करते हैं कि जन सामान्य होना लोगों के जीवन का अंग होने का अर्थ क्या होता है। श्रोताओं, यह सत्य है कि संसार के संग पेश आने में हमें आशा में बने रहने के कारण बतलाने की मांग की जाती है, लेकिन यह शत्रुओं की भांति नहीं होता जो शिकायतें और दोषारोपण करते हैं। हमें यह स्पष्ट रूप से बतलाया जाता है, हम ऐसा नम्रता और दया भावना से करें और यदि संभव हो जहां तक बन पड़े सबों के साथ शांतिमय तरीके से रहें। हमें यह भी निर्देश दिया जाता है कि हम बुराई का सामना अच्छाई से करें और सबों की भलाई के लिए कार्य करें। अपने को दूसरों से बेहतर दिखलाने के बदले हमें चाहिए कि हम नम्रता में दूसरों को अपने से बेहतर समझें। यीशु ख्रिस्त के शिष्यों को अन्य दूसरे लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। निश्चित रूप में यीशु हमसे इस बात की चाह नहीं रखते कि हम अपने को दूसरों से महान समझें जो दूसरों को हे की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि हमारा जीवन जन सामान्य के लिए हो। यह संत पापा का विचार नहीं है या अन्य दूसरे प्रेरितिक विकल्पों में से एक। ये निषेधाज्ञा है जिसे हम ईश वचन में पाते हैं जो हमारे लिए अति स्पष्ट, सीधे और सुदृढ़ करने वाली बात है जिसे परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो उनमें हमें जो चुनौती देने की शक्ति होती है वह अपने में घट जाती है। हम उन्हें बिना दिखावे के साथ उनकी व्याख्या किए बिना जिए। ऐसा करने के द्वारा हम प्रेरिताई की खुशी का अनुभव करेंगे जिसे हम ईश प्रजा के संग साझा करते हैं, क्योंकि हम दुनिया के हृदय में आग जलाने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक पत्र एवेंजेली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं, मैं बन के प्रेम ज्योति तेरे लिए जलूं, सजा के मन के मंदिर में उपासना करूं।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। समाज के हाशिए पर जीने वाले लोग अक्सर संस्थानों द्वारा नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, जिसके कारण वे पीछे छूट जाते। पोप फ्रांसिस ने समाज के हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया है। उन्होंने 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो समाज के हाशिए पर अमानवीय स्थिति में जीवन यापन करते हैं, ताकि वे संस्थानों द्वारा बहिष्कृत ना किए जाएं। पोप फ्रांसिस ने रोम में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की 60वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभागियों को एक संदेश भेजा है और युवाओं के बीच नशीले पदार्थों के सेवन में वृद्धि पर चिंता जताई है, जो हमारे समाज की नाजुक स्थिति को उजागर करता है। संत पापा ने कहा, हर लत के पीछे एक ठोस अनुभव, अकेलापन की कहानी, असमानता, बहिष्कार, एकीकरण की कमी होती है, जिसके लिए हम उदासीन नहीं रह सकते। रविवार 27 अगस्त को फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिभागियों को प्रेषित संदेश में संत पापा ने नशीले पदार्थों की लत में पड़े लोगों की पीड़ा को सुनते हुए उनके पास पहुंचने और समाज की दुर्बलता को दूर करने का आह्वान किया है। उन्होंने संदेश में कहा है, यीशु रुके, नजदीक आए, घावों को चंगा किया। उसी तरह हम भी कमजोरी और पीड़ा की स्थितियों में रुकने, एकाकी और दुखी लोगों की पुकार को सुनने, जो लोग नशीली पदार्थों की गुलामी में पड़ गए हैं उन्हें ऊपर उठाने और जीवन में वापस लाने हेतु झुकने के द्वारा सामीप्य प्रकट करने के लिए बुलाए जाते हैं। 31 अगस्त तक चलने वाले सम्मेलन के प्रतिभागियों को उनकी प्रतिबद्धता, समय और ऊर्जा के लिए धन्यवाद देते हुए, जो नशीले पदार्थों की लत की रोकथाम और उसे संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं, संत पापा ने नशीले पदार्थों के सेवन की खतरनाक वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संदेश में गौर किया है कि किशोरों और युवाओं का महत्वपूर्ण चरण आज के समाज की दुर्बलता और असुरक्षा से जुड़ा है, जो युवाओं को खतरनाक विकल्पों और व्यवहारों की ओर ले जाता है, जैसे मनोक्रिया ड्रग का उपयोग, शराब का दुरुपयोग या वर्चुअल एवं वास्तविक दोनों तरह के चरम स्थितियों का अनुभव करना। उन्होंने कहा, हर एक व्यक्ति के जीवन में किशोरावस्था एवं युवावस्था जीवन का बहुत नाजुक चरण है, जब शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर बदलाव होता है। इसके साथ यह तथ्य भी जुड़ गया है कि हमारा वर्तमान समाज कई मामलों में नाजुक है और बुनियादी असुरक्षा से ग्रस्त है। आप खुद को अतीत के साथ मापने, अज्ञान का पता लगाने की आवश्यकता के साथ साथ बहिष्कृत महसूस करने के डर को शांत करने और अपने साथियों के साथ मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता के कारण नए अनुभवों की अनिवार्य खोज में फंस सकते हैं। संदेश में उठाया गया एक अन्य मुद्दा खेलों में डोपिंग पदार्थों के उपयोग में वृद्धि है, जो हर कीमत पर उच्च परिणाम और उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के जुनून को प्रकट करता है। ये परिस्थितियां हमें आधुनिक समाज की दक्षता एवं उत्पादकता की संस्कृति पर विचार करने हेतु मजबूर करती हैं, जो झिझक या असफलता को स्वीकार नहीं करती। संत पापा ने गौर किया कि हमेशा उम्मीदों पर खरा उतरने, एक अच्छी और सफल छवि प्रस्तुत करने, कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने की जरूरत समग्र मानव विकास की खोज में एक दुर्गम बाधा है। इस संदर्भ में दिशाहीन युवाओं में अपनी पीड़ा और उद्देश्य की कमी को दूर करने के लिए नशीले पदार्थों पर भरोसा करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अंत में संत पापा ने उम्मीद जताई कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट शैक्षणिक, चिकित्सा और पुनर्वास योजनाओं को पहचानने में अपना योगदान दे पाएंगे। ऐसी योजनाएं जो नशीली दवाओं के संकट को रोक सकती हैं और उनका मुकाबला कर सकती हैं, वैकल्पिक सांस्कृतिक मॉडल को बढ़ावा दे सकती हैं और लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, अपने खोए हुए जीवन के कारणों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। पोप फ्रांसिस जब विदेश में अपनी 43वीं प्रेरित यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वे 31 अगस्त से 4 सितंबर तक मंगोलिया में होंगे, वैटिकन न्यूज की पत्रकार लीसा जेंगरेने ने इस एशियाई देश की कार्तिक कलीसिया का अवलोकन प्रस्तुत किया है। मंगोलिया में रोमन कार्तिक कलीसिया की शुरुआत 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के दौरान हुई थी। ताली फ्रांसिस्कन मठवासी जुआनी दीपियान देल कपाइन की गवाही अनुसार, जिसे पोप इनोसेंट चतुर्थ ने 1245 में खान के दरबार में भेजा था, प्राचीन शाही राजधानी काराकोरम एक महानगरीय और बहुत धार्मिक शहर था और वहाँ नेस्टोरियन भी मौजूद थे। पहला कैथोलिक मिशनरी जिन्हें वहाँ प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, वे थे फ्रेंच डोमिनिकन पुरोहित बेथलेमी दी क्रेमोने, जो फ्रांस के राजा की ओर से एक राजनयिक मिशन के दौरान 1253 में काराकोरम पहुंचे थे। सुदूर पूर्व में मंगोल प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ख्रिस्ती धर्म गायब हो गया था और 19वीं सदी के मध्य में चीन में मिशनरी गतिविधि शुरू होने पर यह फिर प्रकट हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में कम्युनिस्ट शासन के अंत एवं मंगोलिया के लोकतंत्र में परिवर्तन के बाद धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना हुई, जिससे कार्तिक मिशनरियों को देश में वापसी की अनुमति मिली। फ्रांस के व्यापारियों को संबोधित एक संदेश में पोप फ्रांसिस ने उद्यमियों से सार्वजनिक भलाई के लिए कार्य करने का आग्रह किया है और मानव गरिमा के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम के मूल्य की प्रशंसा की है। पोप फ्रांसिस ने 28 से 29 अगस्त तक पेरिस में जारी फ्रांसिसी उद्यमियों की बैठक को एक संदेश भेजा है। पोप के संदेश को सोमवार को महाधर्मदर्श मैथ्यू रोजे ने पढ़कर सुनाया। संदेश में संत पापा ने गौर किया है कि सार्वजनिक संपत्ति पहला शब्द है जो मन में आता है जब हम उद्यमियों के बारे सोचते हैं। उन्होंने उद्यमियों को विकास और कल्याण के प्रमुख खिलाड़ी के साथ साथ धन, समृद्धि और सार्वजनिक खुशी का एक आवश्यक इंजन बतलाया। उन्होंने कहा, मीडिया उन उद्यमियों की कठिनाइयों और दर्द के बारे बहुत कम बोलता है जो अपना व्यवसाय बंद कर देते हैं और बिना किसी गलती के असफल हो जाते हैं। उन्होंने योग के ग्रंथ के एक पंक्ति का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि सफलता सीधे सद्गुण और अच्छाई का पर्याय नहीं है और दुर्गुण दोष का पर्याय नहीं है, यहाँ तक कि न्याय संगत पर भी हमला होता है। इसके विपरीत पोप ने कहा, कलीसिया अच्छे उद्यमी की पीड़ा को समझती है। उन्होंने याद किया कि कैसे शुरू से ही कलीसिया ने आधुनिक उद्यमियों के अग्रदूतों, व्यापारियों को अपनी गोद में स्वागत किया है। पोप ने प्रतिभागियों को उनकी बुलाहट की याद दिलाते हुए कहा कि आप जोसेफ की तरह हैं, यीशु की तरह, जिन्होंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा एक शिल्पकार के रूप में काम करते हुए बिताया। यीशु एक बढ़ाई बन गए। संत पापा ने उद्यमियों को प्रोत्साहन देते हुए कहा, नए उद्यमियों के बिना हमारी पृथ्वी पूंजीवाद के प्रभाव का सामना नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि हम एक जरूरी दौर में हैं, एक बहुत ही जरूरी दौर में। हमें आपको और अधिक काम करना चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। संत पापा के शब्द। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।